अनिवार्य ओपनिंग नरेशन। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहले सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हमें 19वीं सदी के रूस की गलियों से ले जाएगी और फिर इंसान के मन की अंधेरी गहराइयों तक।
हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्योदर दोस्तोव्स्की के उस शाहकार की जिसे दुनिया अपराध और दंड या क्राइम एंड पनिशमेंट के नाम से जानती है।
और ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, है ना, ये तो जैसे एक मनोवैज्ञानिक तूफान है, एक दार्शनिक पहेली।
बिल्कुल, दोस्तोव्स्की जिन्होंने खुद साइबेरिया का वो मुश्किल निर्वासन झेला था, वो इंसान की आत्मा के अंदर जो लड़ाई चलती है ना, उसे कागज पर उतारने में माहिर थे। उनका यथार्थवाद सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं है, वो किरदारों के अंदर के संघर्ष का है।
सही कहा। और जब ये छपना शुरू हुआ 1866 में, तो रूस में भी एक अजीब सा माहौल था, मतलब विचारों का एक बवंडर चल रहा था।
हाँ, वो पश्चिम से नए नए विचार आ रहे थे, जैसे वो उपयोगितावाद कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, और वो निहिलिज्म शून्यवाद
कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं, कोई पुरानी नैतिकता बेकार है।
बिल्कुल, नौजवानों के दिमाग में ये सब चल रहा था और अपराध और दंड इसी माहौल से निकला है और इन सवालों से जूझता है। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब आज भी हमें क्यों इतना सोचने पर मजबूर करती है।
तो चलिए शुरू करते हैं, ले चलिए हमें 1860 के उस सेंट पीटर्सबर्ग में। कैसा था वो शहर? क्या वो सिर्फ एक बैकग्राउंड था?
बैकग्राउंड से कहीं ज्यादा। देखिए, वो शहर तो खुद एक किरदार है। आप सोचिए, ऐसी गर्मी जो दम घोट दे, पसीने और धूल की महक, तंग गलियां जहां ठीक से रोशनी भी नहीं आती,
और हर तरफ गरीबी, निराशा।
हाँ, और उसी माहौल में रास्कोलिनिकोव की वो कोठरी है जिसे ताबूत जैसी कोठरी कहा गया है। वो घुटन सिर्फ बाहर नहीं है, वो उसके मन की हालत को भी दिखाती है। ये शहर उसके अंदर के जो अंधेरे विचार है ना, उन्हें और हवा देता है।
इसी घुटन भरे माहौल में हमारा हीरो है रोडियन रोमानोविच रास्कोलिनिकोव, एक होनहार लड़का पर बहुत गरीब, कानून की पढ़ाई छोड़ चुका है
और उसके दिमाग में एक सिद्धांत पकड़ा है, एक बहुत खतरनाक सोच।
हाँ, और यहीं से कहानी का असली मुद्दा शुरू होता है। रास्कोलिनिकोव का मानना है कि भाई, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो साधारण जो भेड़े हैं बस नियमों पर चलते हैं,
और दूसरे असाधारण जैसे नेपोलियन, जिन्हें हक है कि वो समाज के बड़े भले के लिए छोटे मोटे नियम तोड़ दें, यहाँ तक कि खून भी बहा दें।
लेकिन क्या कोई इंसान खुद को ये हक दे सकता है? क्या ये सिर्फ एक तरह का बौद्धिक भ्रमण नहीं है?
यही तो सवाल है, और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए, या कहिए अपने सिद्धांत को परखने के लिए, रास्कोलिनिकोव एक भयानक कदम उठाता है।
वो एक बूढ़ी साहूकारिन अलियोना इवानोवा, जो काफी कंजूस और मतलब बुरी भी मानी जाती है, उसकी हत्या का फैसला करता है।
हाँ, और यहीं से वो शुरू होता है जिसे हम असल कहानी कह सकते हैं। ये कोई जासूसी कहानी नहीं है कि कातिल कौन है, वो तो हमें पता है।
सही बात है, सवाल ये है कि उसने ये क्यों किया, और सबसे जरूरी, इसके बाद हुआ क्या?
बिल्कुल, अपराध तो बस शुरुआत है, असली सजा, वो दंड, वो तो उसके बाद शुरू होता है, उसके अंदर।
वो अपराध बोध, वो पागलपन की हद तक शक करना, और वो एहसास कि मैं पूरी दुनिया से कट गया हूँ, शायद ये किसी भी जेल की सजा से ज्यादा भयानक है।
हाँ, तो चलिए इस किरदार को थोड़ा और खोलते हैं। रास्कोलिनिकोव इतना बटा हुआ क्यों है ये?
हाँ, ये समझना जरूरी है। वो इंटेलिजेंट है, उसमें गर्व भी है, कहीं ना कहीं दया भी है शायद।
है, बिल्कुल है, लेकिन साथ ही वो बहुत अकेला है, दुनिया से कटा हुआ सा, और अपने उस सिद्धांत के नशे में जैसे डूबा हुआ है। उसकी वजहें भी देखिए कितनी उलझी हुई हैं। सिद्धांत साबित करना है, गरीबी से निकलना है, माँ और बहन है दुनिया, उनकी मदद करनी है।
हाँ, वो नहीं चाहता कि उसकी बहन किसी मजबूरी में शादी करे। उसका नाम भी देखिए, रास्कोल, जिसका मतलब ही होता है विभाजन या दरार, शायद ही उसके अंदर की टूट को ही दिखाता है।
सही पकड़ा। और हत्या के बाद क्या उसे वो ताकत मिली, वो असाधारण होने का एहसास?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ठीक उल्टा होता है।
हाँ, उसका वो पूरा सिद्धांत जिसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ताकत की जगह उसे क्या मिलता है? कमजोरी, डर और एक ऐसा अकेलापन जिसकी कोई हद नहीं।
वो बीमार पड़ जाता है, उसे अजीब अजीब वहम होते हैं, उसे लगता है हर कोई उसे घूर रहा है, सब जानते हैं।
हाँ, और वो अपने सबसे करीबी लोगों से भी कट जाता है। माँ आती है, बहन आती है, उसका वो वफादार दोस्त है रजू मीखन, पर वो उनसे भी दूर भागता है। उसकी यात्रा एक तरह के नर्क से गुजरती है, सिर्फ तकलीफ है, अपराध बोध है, और लगता है कि इससे निकलने का रास्ता शायद सिर्फ कबूलनामे से ही मिलेगा।
लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी भी आती है, सोनिया, सोनिया सेमेनोवना मार्मेलाडोव। क्या हम उसे कहानी का नैतिक दिल कह सकते हैं?
बिल्कुल कह सकते हैं। सोनिया का किरदार अद्भुत है। परिस्थितियां देखिए, परिवार के लिए उसे वेश्या बनना पड़ता है, समाज की नजर में सबसे नीचे,
लेकिन उसके अंदर
एक अजीब सी पवित्रता है। उसकी आस्था बहुत गहरी है, वो बहुत विनम्र है, और उसका प्रेम वो बिना किसी शर्त का है। वो रस्कोल्निकोव के ठीक उलट है। वो जैसे दिखाती है कि बाहर चाहे जितनी गंदगी हो, अंदर की अच्छाई बचाई जा सकती है।
और रास्कोल्निकोव के लिए उसकी क्या भूमिका है? क्या वो सिर्फ एक हमदर्द है?
हमदर्द से कहीं ज्यादा, वो जैसे उसकी आत्मा को बचाने वाली है, उसकी उद्धारक। उनके बीच एक बहुत गहरा, एक आध्यात्मिक सा रिश्ता बनता है। सोनिया ईसाई प्रेम और माफी का प्रतीक है। वो सीन याद है जब वो रास्कोल्निकोव के कहने पर बाइबल से लैजरस को जिंदा करने की कहानी पढ़ती है?
हाँ, बहुत मार्मिक सीन है वो।
वो जैसे रास्कोल्निकोव की अपनी मरी हुई आत्मा को जगाने की कोशिश है। वही उसे हिम्मत देती है कि वो जाकर अपना गुनाह कबूल करे। और जब उसे सजा होती है तो वो उसके पीछे साइबेरिया तक जाती है। उसका प्यार रास्कोल्निकोव की उस ठंडी तार्किक दुनिया से बिल्कुल परे है।
इस कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प किरदार है, वो जांच करने वाला अफसर पोरफोरी पेत्रोविच। वो आम जासूसों जैसा तो नहीं लगता।
नहीं, बिल्कुल नहीं। पोरफोरी दिमागी खेल का मास्टर है। उसे सबूतों से ज्यादा दिलचस्पी है रास्कोल्निकोव के मनोविज्ञान में।
वो उसके साथ जैसे चूहे बिल्ली का खेल खेलता है ना?
हाँ, उसकी बातों को पकड़ना, उसे उकसाना, उसे धीरे धीरे कबूल नामे की तरफ धकेलना। वो सिर्फ कानूनी न्याय नहीं चाहता, वो जैसे मनोवैज्ञानिक न्याय भी चाहता है। उसका मकसद सिर्फ पकड़ना नहीं, बल्कि उसे इस हालत में लाना है कि वो खुद ही टूटकर सब मान ले।
उनके बीच की जो सीन है वो बड़े तनाव भरे होते हैं।
हाँ, दिमागी कसरत जैसे।
बहुत बढ़िया लिखे गए।
और फिर एक और किरदार है जो थोड़ा रहस्यमयी है, अर्कैदी इवानोविच स्विद्रिगाइलोव, अमीर अय्याश। उसे अक्सर रास्कोल्निकोव का डार्क डबल या अंधेरा साया कहा जाता है।
क्योंकि स्विद्रिगाइलोव वो इंसान है जो असल में उन नैतिक सरहदों के पार जी रहा है, जहां रास्कोल्निकोव सिर्फ जाने की सोच रहा है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, बिना किसी अपराध बोध के जीता है।
उसका रास्कोल्निकोव की बहन दुनिया से भी एक अजीब सा रिश्ता है।
हाँ, वो दुनिया के पीछे पड़ा है, जो कहानी में और टेंशन लाता है। और देखिए विडंबना, वो छुपकर रास्कोल्निकोव का कबूलनामा सुन लेता है जब वो सोनिया को सब बता रहा होता है।
अच्छा, फिर वो उस जानकारी से दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। और अंत में जब उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं, सब खोखला है, तो वो आत्महत्या कर लेता है।
तो उसका अंत क्या दिखाता है?
शायद ये कि बिना नैतिकता, बिना किसी मकसद के जीवन बस एक खालीपन है, एक शून्य। वो एक तरह की चेतावनी है।
इन बड़े किरदारों के अलावा दो और लोग हैं जो कहानी को थोड़ा सहारा देते हैं, रजू मीखन और दुनिया।
हाँ बिल्कुल, दिमित्री रजू मीखन, वो रास्कोल्निकोव का एकदम वफादार दोस्त है। मेहनती, प्रैक्टिकल, दिल का अच्छा। वो रास्कोल्निकोव का एकदम उल्टा है। वो दिखाता है कि गरीबी में भी इज्जत से जिया जा सकता है।
और उसका दुनिया के साथ जो रिश्ता बनता है वो कहानी में थोड़ी स्थिरता लाता है।
हाँ, और दुनिया खुद भी, वो सिर्फ सुंदर नहीं है, वो बहुत समझदार है, इरादों की पक्की है, और नैतिक रूप से बहुत मजबूत है।
वो लूजन जैसे मौका परस्त आदमी से भी बचती है, और स्विद्रिगाइलोव जैसे शिकारी से भी।
सही कहा, वो दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी एक औरत अपनी इज्जत और आजादी कैसे बनाए रख सकती है।
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? अपराध से लेकर अंत तक का सफर, उसके मुख्य पड़ाव क्या हैं?
तो देखिए, शुरुआत होती है रास्कोल्निकोव के दिमाग में उस सिद्धांत के पकने से और हत्या की योजना से। फिर माँ का वो खत आता है जिसमें दुनिया की शादी की बात होती है उस अमीर पर बुरे आदमी लूजन से।
हाँ, जिससे रास्कोल्निकोव और भड़क जाता है।
बिल्कुल, वो सोचता है कि ये बलिदान वो नहीं होने देगा, और फिर वो जाता है कुल्हाड़ी छुपाकर और अलियोना इवानोवना की हत्या कर देता है। लेकिन तभी अनजाने में अलियोना की बेचारी सौतेली बहन लिजावेता वहां आ जाती है।
ओ,
ये तो उसने सोचा नहीं था।
नहीं, और घबराहट में डर के मारे वो उसे भी मार डालता है। ये दूसरी हत्या उसे और ज्यादा तोड़ देती है। वो जल्दी जल्दी कुछ चीजें उठाता है और वहां से भाग निकलता है।
और हत्या के फौरन बाद उसकी हालत क्या होती है?
वो जैसे बिखर जाता है। तेज बुखार, अजीब अजीब ख्याल, वहम, ऐसा लगता है कि हर कोई उसे ही देख रहा है, सब जानते हैं। उसका जो अंदरूनी दंड है वो शुरू हो चुका है। वो चोरी का सामान कहीं छुपा देता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है उस शराबी मार्मेलाडोव से। उसी से उसे सोनिया के त्याग के बारे में पता चलता है।
फिर मार्मेलाडोव का एक्सीडेंट हो जाता है।
हाँ, और वो मर जाता है। और रस्कोलनिकोव, जो खुद पैसों की तंगी में है, अपनी माँ से मिले आखिरी पैसे उसकी बेसहारा बीवी कतरीना इवानोवना को दे देता है। ये शायद उसके उस असाधारण वाले सिद्धांत पर पहली दरार थी। उसमें अभी भी इंसानियत बाकी थी।
फिर कहानी में माँ और बहन आ जाती हैं, पोरफिरी से मुलाकातें होती हैं।
हाँ, माँ और बहन के आने से उसका अकेलापन और बढ़ता है, क्योंकि वो उनसे भी सच छुपा रहा है। पोरफिरी के साथ उसकी दिमागी कश्मकश तेज होती जाती है। अपराध बोध उसे सोनिया की तरफ खींचता है। उसे लगता है वही उसे समझ सकती है, क्योंकि वो भी समाज की नजर में गिरी हुई है।
वो उससे लाजरस की कहानी पढ़ने को कहता है।
हाँ, शायद अपने लिए एक उम्मीद खोज रहा है। और आखिरकार वो सोनिया के सामने टूट जाता है, अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बदकिस्मती से स्विड्रिगाइलोव ये सब सुन लेता है।
और अंत क्या, कबूलनामे के बाद उसे शांति मिल जाती है?
फौरन नहीं, स्विड्रिगाइलोव की आत्महत्या उसे और हिला देती है। पोरफिरी उसे आखिरी बार समझाता है कि कबूल कर लो, सजा कम होगी और आत्मा को शांति मिलेगी। वो माँ से मिलता है, एक दर्दनाक विदाई होती है।
और फिर वो चौराहे पर जाता है।
हाँ, सोनिया की सलाह पर जमीन को चूमता है, उस धरती को जिसे उसने अपने खून से अपवित्र किया था, और फिर पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ कबूल कर लेता है।
और कहानी का अंत होता है उपसंहार में, साइबेरिया में।
हाँ, साइबेरिया का जेल कैंप। सोनिया भी वहाँ है, एक फरिश्ते की तरह उसके साथ। शुरू में रास्कोलनिकोव वैसा ही है, अहंकारी, बिना किसी पछतावे के।
लेकिन फिर कुछ बदलता है।
हाँ, एक गंभीर बीमारी होती है उसे, और एक भयानक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि पूरी दुनिया एक अजीब से कीटाणु, एक तर्क और नास्तिकता के प्लेग से तबाह हो रही है। ये सपना जैसे उसके अंदर के बौद्धिक घमंड को तोड़ देता है।
और फिर?
फिर एक दिन नदी के किनारे जब वो सोनिया को देखता है, उसे पहली बार यह एहसास होता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और सोनिया का प्यार कितना गहरा, कितना सच्चा है। और वो रो पड़ता है।
वो आंसू
उसके पछतावा की, उसके आध्यात्मिक पुनर्जन्म की शुरुआत है। कहानी किसी बने बनाए हैप्पी एंडिंग पर नहीं खत्म होती, बल्कि एक नए, मुश्किल लेकिन सच्चे जीवन की उम्मीद पर खत्म होती है।
ये कहानी वाकई कई गहरे सवाल उठाती है, जैसे एक तो ये अकेलापन, समाज से कट जाना।
बिल्कुल, देखिए, रास्कोलनिकोव का अपराध उसके अकेलेपन में ही पनपता है। वो खुद को सबसे अलग, सबसे ऊपर समझता है, और यही सोच उसे सबसे काट देती है।
और मुक्ति कब मिलती है?
मुक्ति तभी मिलती है जब वो सोनिया के प्यार और सबके सामने अपना गुनाह मानकर वापस इंसानियत से जुड़ता है। अकेलापन विनाश की ओर ले जाता है, जुड़ाव मुक्ति की ओर।
और वो जो सुपरमैन वाला सिद्धांत था, वो शून्यवाद, दोस्तोव्स्की ने उसका क्या किया?
दोस्तोव्स्की ने दिखाया कि ये सोच कितनी खोखली और खतरनाक है। उनका मानना था कि नैतिकता कोई बाहरी नियम नहीं, वो इंसान की आत्मा का हिस्सा है। उसे तोड़ने की कोशिश मतलब खुद को ही तोड़ना। रास्कोलनिकोव को ताकत नहीं मिली, उसे असहनीय पीड़ा मिली। ये उपन्यास उस जमाने के जो रेडिकल विचार थे ना, उन पर एक तरह की तीखी टिप्पणी है।
तो क्या ये पीड़ा ही मुक्ति का रास्ता है? दोस्तोव्स्की के लिए दुख का क्या मतलब है?
ये उनके दर्शन का, उनकी सोच का एक अहम हिस्सा है कि दुख सहने से ही आत्मा शुद्ध होती है। सोनिया जो बिना शिकायत दुख सहती है, वो इसी का प्रतीक है। रास्कोलनिकोव के लिए दुख पहले तो सजा है, लेकिन बाद में यही उसे उसके घमंड से निकालकर वापस इंसान बनाता है। उसे दुख को स्वीकार करना पड़ता है, तभी उसका उद्धार होता है।
मतलब बुद्धि और सिद्धांत हार जाते हैं और प्रेम और करुणा जीत जाते हैं।
अंत में तो यही लगता है। रास्कोलनिकोव का वो सारा दिमागी जाल, वो थ्योरी उसे कहीं नहीं ले जाती। उसका बचाव होता है सोनिया के उस निस्वार्थ, उस ईसाई प्रेम से। दोस्तोव्स्की शायद यही कह रहे हैं कि असली मुक्ति तर्क में नहीं, सहानुभूति में है, जुड़ाव में है, आत्मा की आवाज सुनने में है।
दोस्तोवस्की का लिखने का तरीका भी कमाल का है। वो कैसे हमें रास्कालिनिकोफ के दिमाग के अंदर ले जाते हैं।
हाँ, वो ज्यादातर कहानी रास्कालिनिकोफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। इसे तकनीकी भाषा में सीमित तृतीय पुरुष सर्वज्ञ दृष्टिकोण कहते हैं। मतलब हम वो ही देख, सुन और महसूस कर रहे हैं जो रास्कालिनिकोफ कर रहा है।
उसकी घबराहट, उसका डर, उसके मन की बातें सब हमें पता चलती हैं।
बिल्कुल, इससे हम उसके साथ एक अजीब सी नज़दीकी महसूस करते हैं, जैसे हम भी उसके राज में शामिल हों। ये पाठक को एकदम बांध लेता है, पर थोड़ा असहज भी करता है।
उपन्यास में प्रतीक भी बहुत हैं।
हाँ, बहुत सारे, जैसे वो सेंट पीटर्सबर्ग शहरी, गरम, भीड़ भरा, गंदा, वो जैसे रास्कालिनिकोफ के उलझे हुए बीमार मन का आईना है।
और वो क्रॉस जो सोनिया उसे देती है।
हाँ, वो सरू की लकड़ी का क्रॉस, वो उस दुख के बोझ का प्रतीक है जिसे मुक्ति पाने के लिए उठाना ही पड़ता है। और रास्कालिनिकोफ के सपने, वो घोड़ी को पीटे जाने वाला सपना या अंत में वो प्लेग वाला सपना, ये सब उसके अंदर दबे डर और विचारों की लड़ाई को दिखाते हैं।
कुछ लाइनें हैं जो अकेले ही याद रह जाती हैं। कोई ऐसा डायलॉग जो आपको लगता है कि उपन्यास का निचोड़ है?
एक तो रास्कालिनिकोफ का खुद को सही ठहराने की वो कोशिश है। मैंने इंसान को नहीं मारा, मैंने एक सिद्धांत को मारा, मैंने उस जू को मारा, बेकार हानिकारक एक जू। ये दिखाता है कि कैसे वो अपने किए को जस्टिफाई करने के लिए पीड़ित को इंसान का दर्जा भी नहीं देना चाहता।
और दूसरी तरफ सोनिया का रास्ता।
हाँ, जब वो कहती है तुरंत जाओ, इसी क्षण चौराहे पर खड़े हो जाओ, झुक जाओ, पहले उस धरती को चूमो जिसे तुमने अपवित्र किया है, और फिर पूरी दुनिया के सामने झुक जाओ और सब लोगों से जोर से कहो, मैं हत्यारा हूं, तब ईश्वर तुम्हें फिर से जीवन देगा। इसमें पूरा रास्ता है, विनम्रता, कबूलनामा और सबके सामने प्रायश्चित।
ये पढ़ते हुए पाठक के लिए भी बहुत इंटेंस अनुभव होता है। वो घुटन, वो चिंता, और कई बार तो उस हत्यारे के लिए भी एक अजीब सी सहानुभूति महसूस होती है।
हाँ, यही दोस्तोयेवस्की का जादू है, वो हमें उस अंधेरे मन में खींच लेते हैं।
लेकिन क्या इस अंधेरे में कोई उम्मीद भी है?
है, बिल्कुल है। सोनिया के साथ जो पल है, और खासकर वो अंत जहाँ रास्कालिनिकोफ बदलता है, जहाँ वो रोता है, वो गहरी उम्मीद और मुक्ति के पल है। वो दिखाते हैं कि शायद कोई भी आत्मा, कितनी भी गिरी हुई क्यों ना हो, बच सकती है अगर वो प्यार और विनम्रता को अपना ले।
तो आखिर में ये उपन्यास हमें किन बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है?
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अच्छाई और बुराई क्या है? हमारी अपनी नैतिकता की बुनियाद क्या है? तर्क और विश्वास में क्या संतुलन होना चाहिए? क्या असली सजा बाहर से मिलती है या हमारे अंदर से?
ये एक चेतावनी भी है शायद कि कैसे खतरनाक विचार हकीकत बन सकते हैं और उसकी इंसानी कीमत क्या होती है।
हाँ, और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार और माफी वाकई सबसे बड़े गुनाहों को भी धो सकते हैं?
ये किताब शायद इसीलिए इतनी महान है और हमेशा प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि ये इंसान की आत्मा की जटिलताओं को, हमारे अंदर अच्छे और बुरे के बीच की उस लगातार चलने वाली लड़ाई को बिना किसी पर्दे के दिखाती है।
और ये उम्मीद भी देती है कि कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, करुणा से, अपना सच स्वीकार करने से और प्यार से एक नई जिंदगी का रास्ता शायद खुल सकता है।
अनिवार्य क्लोजिंग लाइन। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।